एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
प्रभु मैं अपवित्र हूँ, तू है पवित्र प्रभु मैं अपवित्र हूँ, तेरे लहू के सामर्थ से
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजू परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर फिर से आपके पास मैं आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग पिता, उनको तेरे वचन से बहुताय से आशीष दे। मेरे संगो पिता तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण करें, आमीन। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मानसिक शक्ति और भाषण। प्यारो, इन दिनों हम तोड़े या प्रतिभाओं के विषय चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर सब कोई को कुछ ना कुछ तोड़े दिए हैं और हम में से हर एक को इसका उपयोग करना है। हमने पहले देखा कि चरित्र विकास इसमें से एक बहुत विशेष कार्य है। चरित्र ही है जिसे हम इस दुनिया से स्वर्ग राज्य ले जा सकते हैं। हनुक ने इस दुनिया में यीशु मसीह के द्वारा अपने चरित्र का विकास किया। दानियल इस धरती पर अपने चरित्र का सर्वोच्च विकास किया। हम सबों को चरित्र विकास का कार्य करना है। आज हम मानसिक शक्ति और भाषण जो परमेश्वर के मनुष्य को दिए गए दो विशेष तोड़े हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। परमेश्वर मानसिक क्षमताओं की प्रशिक्षण चाहता है। वह चाहता है कि उसके सेवकों में दुनिया के लोगों की तुलना में अधिक बुद्धि और स्पष्ट विवेक हो और वह उन लोगों से नाराज है जो कुशल सुविवेक कार्यकर्ता बनने के लिए बहुत लापरवाह या बहुत आलसी हैं। परमेश्वर हमें पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी ताकत से और पूरे दिमाग से उससे प्यार करने के लिए कहते हैं। यह हम पर बुद्धि को उसकी पूरी क्षमता तक विकसित करने का दायित्व डालता है ताकि पूरे दिमाग से हम अपने सृष्टिकर्ता को जान सके और उसे प्यार कर सके। प्यारो, यदि उसे उसकी आत्मा के नियंत्रण में रखा जाए तो बुद्धि को जितना अधिक अच्छी तरह से विकसित किया जाता है उतना ही अधिक प्रभावी ढंग से उसका उपयोग परमेश्वर की सेवा में किया जा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति जो परमेश्वर को समर्पित है और जो दूसरों को आशीर्वाद देने की इच्छा रखता है उसे प्रभु अपनी सेवा में इस्तेमाल कर सकता है और करता भी है। लेकिन जो लोग समर्पण की उसी भावना के साथ पूरी तरह से शिक्षा का लाभ उठा चुके हैं वे मसीह के लिए कहीं अधिक व्यापक कार्य कर सकते हैं। वे लाभकारी स्थान पर खड़े हैं। उदाहरण के लिए हम बाइबल में मूसा और प्रेरित पौलुस को देख सकते हैं। मूसा शिक्षित व्यक्ति था और परमेश्वर ने उसे बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया। इसराइली जाति को मिस्र से निकाल लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने अपना शिक्षा पूरा दुनिया को बतलाने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर इसी तरह जो शिक्षित और समर्पित लोग हैं उसे अपना काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। प्रभु चाहते हैं कि हम यथासंभव शिक्षा प्राप्त करें ताकि हम दूसरों को अपना ज्ञान प्रदान कर सके। कोई भी यह नहीं जान सकता कि उन्हें कहाँ या कैसे काम करने या परमेश्वर के लिए बोलने के लिए बुलाया जा सकता है। केवल हमारा स्वर्गीय पिता ही देखता है कि वह मनुष्यों को क्या बना सकता है। हमारे सामने ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें हमारा कमजोर विश्वास नहीं समझ पाता। हमारे मन को इतना प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि यदि आवश्यक हो तो हम उनके वचन की सच्चाई को सर्वोच्च संसारिक अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर सके इस तरह से कि उसका नाम महिमावान हो। हमें परमेश्वर के लिए काम करने के लिए बौद्धिक रूप से खुद को योग्य बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जिन युवाओं को शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करना चाहिए। किसी अवसर का इंतजार ना करें, अपने लिए एक अवसर बनाएं। जो भी छोटा रास्ता सामने आए उसे अपनाएं। मित व्यता का अभ्यास करें। इकोनॉमी बने अपनी भूख मिटाने या मौज मस्ती की तलाश में अपने साधनों को खर्च ना करें। ईश्वर द्वारा बताए गए उपयोगी और कुशल बनने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। आप जो भी काम करें उसमें पूरी तरह से और ईमानदारी से काम लें। बुद्धि को मजबूत करने के लिए अपनी पहुंच में हर लाभ उठाएं। पुस्तकों के अध्ययन को उपयोगी शारीरिक श्रम के साथ मिलाएं और ईमानदारी से प्रयास, सतर्कता और प्रार्थना के द्वारा ऊपर से आने वाली बुद्धि को सुरक्षित करें। इससे आपको एक स्वर्गीय शिक्षा मिलेगी। इस प्रकार आप चरित्र में ऊपर उठ सकते हैं और अन्य लोगों के मन पर प्रभाव डाल सकते हैं जिससे आप उन्हें सच्चाई और पवित्रता के मार्ग पर ले जा सके। प्यारो, यदि हम अपने अवसरों और विशेष अधिकारों के प्रति सजग होते तो स्वशिक्षा के कार्य में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। सच्ची शिक्षा का अर्थ है कॉलेज द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से कहीं अधिक। जबकि विज्ञान के अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ईश्वर के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध के माध्यम से उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र को अपनी बाइबल लेनी चाहिए और खुद को महान शिक्षक के साथ संवाद में रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप बाइबल पढ़ेंगे और उसकी उपदेशों के अनुसार चलेंगे तो धरती के श्रेष्ठ विद्वानों में से आप होंगे। ईश्वरीय सत्य की खोज में कठिन समस्याओं से जूझने के लिए मन को परिशिक्षित और अनुशासित किया जाना चाहिए। जो लोग ज्ञान के भूखे हैं, ताकि वे अपने साथियों को आशीर्वाद दे सके, वे स्वयं ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके वचन के अध्ययन के माध्यम से उनकी मानसिक शक्तियां गंभीर गतिविधि के लिए जागृत होंगी, क्षमताओं का विस्तार और विकास होगा और मन शक्ति और दक्षता प्राप्त करेगा। आप सुलेमान राजा को देखिए, उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया। और आप परमेश्वर की सेवा, लोगों की भलाई करने के लिए वह अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, हम यह बाइबल में पाते हैं। उसी तरह आप भी अगर बुद्धि पाना चाहते हैं, दूसरों का सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर आपको देगा। ईश्वर के लिए काम करने वाले हर व्यक्ति को आत्म अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए। यह वाक्पटुता या सबसे शानदार प्रतिभाओं से कहीं ज्यादा हासिल करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप जानते हैं, एक साधारण मन अच्छी तरह से अनुशासित सबसे उच्च शिक्षा मन और आत्मनियंत्रण के बिना सबसे बड़ी प्रतिभाओं की तुलना में अधिक और उच्च कार्य पूरा करेगा। आइए हम अब भाषण के प्रतिभा के बारे में बातें करें। वाणी की शक्ति एक ऐसी प्रतिभा है जिसे परिश्रम पूर्वक विकसित किया जाना चाहिए। ईश्वर से हमें जो भी उपहार मिले हैं, उनमें से कोई भी इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता है। वाणी से हम दूसरों को समझाते और राजी करते हैं, इसी से हम ईश्वर से प्रार्थना और स्तुति करते हैं, और इसी से हम दूसरों को उद्धारकर्ता के प्रेम के बारे में बताते हैं। तो यह कितना महत्वपूर्ण है कि इसे इस तरह परिशिक्षित किया जाए कि यह भलाई के लिए सबसे अधिक प्रभावी हो। संस्कृति और आवाज के सही इस्तेमाल की बहुत उपेक्षा की जाती है, यहाँ तक कि बुद्धिमान और ईसाई गतिविधि वाले लोगों द्वारा भी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतनी धीमी या इतनी तेज गति से पढ़ते या बोलते हैं कि उन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता। कुछ लोगों की आवाज़ मोटी और अस्पष्ट होती है, दूसरे लोग ऊंची और तीखी आवाज में बोलते हैं जो सुनने वालों के लिए दर्दनाक होती है। पाठ, भजन और सार्वजनिक सभाओं के सामने प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट और अन्य कागजात कभी कभी इस तरह से पढ़े जाते हैं कि उन्हें समझा नहीं जा सकता, और अक्सर ऐसा होता है कि उनका बल और प्रभाव नष्ट हो जाता है। यह एक ऐसी बुराई है जिसे सुधारा जा सकता है और सुधारा जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बाइबल निर्देश देती है। एजरा के दिनों में लोगों को शास्त्र पढ़ने वाले लेवियों के बारे में कहा गया है, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को स्पष्ट रूप से पढ़ा और अर्थ समझाया और उन्हें पढ़ने के लिए समझाया। हम पढ़ते हैं इसे नहेमिया 8:8 में, परिश्रम पूर्वक प्रयास करने से सभी लोग बुद्धिमानी से पढ़ने और पूर्ण स्पष्ट गोल स्वर में बोलने की शक्ति विशिष्ट और प्रभावशाली तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से हम मसीह के लिए काम करने वालों के रूप में अपनी कार्य कुशलता को बहुत बढ़ा सकते हैं। हर मसीह को दूसरों को मसीह के अथाह धन के बारे में बताने के लिए बुलाया गया है, आपको और मुझे भी। इसलिए उन्हें वाणी में पूर्णता की तलाश करनी चाहिए, उसे परमेश्वर के वचन को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि वह सुनने वालों को पसंद आए। परमेश्वर ने यह नहीं सोचा है कि उसके मानवीय चैनल असभ्य होंगे, या उसकी इच्छा नहीं है कि मनुष्य उस स्वर्गीय धारा को छोटा या नीचा दिखाए जो उसके माध्यम से दुनिया में बहती है। हमें यीशु की ओर देखना चाहिए, जो कि एक आदर्श उदाहरण है। हमें पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी शक्ति में हमें प्रत्येक अंग को सीधे कार्य के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। यह बात खास तौर पर उन लोगों के लिए सच है जिन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए बुलाया जाता है। हर मंत्री और हर शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह लोगों को एक ऐसा संदेश दे रहा है जिसमें शाश्वत हित शामिल है। हर पुरोहित और हर शिक्षक को यह बात ध्यान में रखना है। बोला गया सत्य अंतिम गणना के महान दिन में उनका न्याय करेगा। और कुछ आत्माओं के लिए संदेश देने वाले के तरीके से ही यह तय होगा कि वह इसे स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। फिर वचन को इस तरह से बोला जाना चाहिए कि यह समझ को आकर्षित करे और दिल को प्रभावित करे। इसे धीरे धीरे स्पष्ट रूप से और गंभीरता से बोला जाना चाहिए, फिर भी उस पूरी गंभीरता के साथ जो इसके महत्व की मांग करती है। बोलने की शक्ति का सही संस्कृति और उपयोग मसीह कार्य की हर पंक्ति से संबंधित है। यह घरेलू जीवन में और एक दूसरे के साथ हमारे सभी संबंधों में प्रवेश करता है। हमें खुद को मधुर स्वर में बोलने, शुद्ध और सही भाषा का उपयोग करने और दयालु और विनम्र शब्दों का उपयोग करने की आदत डालनी चाहिए। मधुर दयालु शब्द आत्मा के लिए ओस और कोमल वर्षा के समान है। पवित्र शास्त्र मसीह के बारे में कहता है कि अनुग्रह उसके होठों में डाला गया था ताकि वह थके हुए को समय पर वचन बोलना जान सके। वचन संहिता 45:2 और यशायाह 50:4। और प्रभु हमें आदेश देते हैं, तुम्हारा बोलना हमेशा अनुग्रह पूर्ण हो, लिखा गया है कुलुसियों 4:6 में, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो, इफिसियों 4:29। दूसरों को ठीक करने या सुधारने की कोशिश में हमें अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए। वे जीवन के लिए जीवन या मृत्यु के लिए मृत्यु का स्वाद होंगे। फटकार या सलाह देते समय कई लोग तीखे कठोर भाषण देते हैं। ऐसे शब्द जो घायल आत्मा को ठीक करने के लिए उपयुक्त नहीं होते। इन गलत सलाह वाले अभिव्यक्तियों से आत्मा चिढ़ जाती है और अक्सर गलती करने वाले लोग विद्रोह के लिए उकसाए जाते हैं। एक भी शब्द बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। कोई भी बुरी बात, कोई भी तुच्छ बात, कोई भी चिड़चिड़ापन या अशुद्ध सुझाव मसीह का अनुसरण करने वाले के होठों से नहीं निकलना चाहिए। हर परिवार, हर एक मसीह पर भ्रष्ट भाषा के खिलाफ रास्ता बंद करने का कर्तव्य है। माता पिता का काम है कि वे अपने बच्चों को बोलने की सही आदतें सिखाएं। इस संस्कृति के लिए सबसे अच्छा स्कूल घर का जीवन है। बच्चों को बचपन से ही अपने माता पिता और एक दूसरे से सम्मानपूर्वक और प्यार से बात करना सिखाया जाना चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि सिर्फ शब्द ही मायने रखते हैं। मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें अपने शब्दों को इस तरह से बनाना चाहिए कि वे मसीही जीवन में एक दूसरे के लिए सहायता और प्रोत्साहन बने। हमें मसीह के बारे में उनसे बात करनी चाहिए जो उसे नहीं जानते। हमें वैसा ही करना चाहिए जैसा मसीह ने किया। वह जहाँ कहीं भी था, आराधनालय में, सड़क के किनारे, नाव में जो जमीन से थोड़े दूर पर रखी गई थी, फरीसी की दावत में या चुंगी लेने वाले की मेज पर, उसने लोगों से उच्च जीवन से जुड़ी बातें की, प्रकृति की बातें, रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाएं उसने सत्य के शब्दों से बांध दी थी। उसके सुनने वालों के दिल उसकी ओर खींचे चले आए, क्योंकि उसने उनके बीमारों को चंगा किया था, उनके दुखी लोगों को सांत्वना दी थी और उनके बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। जब उसने बोलने के लिए अपने होंठ खोले तो उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और हर शब्द किसी न किसी आत्मा के लिए जीवन की खुशबू थी। हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। हम चाहे जहाँ भी हों, हमारे उद्धारकर्ता के बारे में दूसरों से बात करने के लिए अवसर की तलाश करनी चाहिए। अगर हम भलाई करने में मसीह के उदाहरण का अनुसरण करते हैं तो दिल हमारे लिए खुल जाएंगे जैसे कि वे उसके लिए खुल गए थे। अचानक नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेम से पैदा हुई चतुराई से हम उन्हें उसके बारे में बता सकते हैं जो 10,000 में सबसे प्रमुख और बहुत प्यारा है, जैसा लिखा है सुलेमान के गीत 5:10-16 पद में। यह सबसे बड़ा काम है जिसमें हम भाषण की प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। यह हमें इसलिए दिया गया था ताकि हम मसीह को पाप क्षमा करने वाले उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो आइए प्यारों भाइयों और बहनों, यह जो तोड़ा हम सबों को मिला है, यह प्रतिभा बोलने की, यह वाणी, यह भाषण, इसका हम लोगों की उत्थान के लिए, लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए इस्तेमाल करें, जिससे हम परमेश्वर का महिमा करें, हम प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है उसके गुण को हम दूसरों को बांटें। और ऐसा हम बांटते हैं तो हम खुद आशीषित होंगे। चलिए हम प्रण लें कि हम परमेश्वर का प्रेम को दूसरों को अपने होठों से, अपने भाषण से, अपने वचन से, अपनी बोली से बतलाएं। परमेश्वर हम सबों को, आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर से आते हैं। हम सबों को तो आशीषित कर, हम सबों को तो ग्रहण कर, और हमें जो तू वरदान दिया है जैसे इसको बोलने के लिए और मानसिक शक्ति, इसका हम प्रशिक्षण करें, उसका इस्तेमाल करें, उसका सही उपयोग करें पिता, लोगों को भलाई करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, और जिससे हम तेरा महिमा कर सकते हैं। हमारा प्रतिभा को और बढ़ाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे लिए जीने सके, तेरा महिमा करने सके और तेरी सेवा करने सके। और सबों को तो आशीषित कर और तेरे राज में पहुंचाना, और यीशु के नाम से मांगता हूं, सोना ग्रहण कर। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।